महिला हिंसा अभियान पर एक नजर अब प्रस्तुत है। जोहार श्रोताओं, मैं सरस्वती आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ महिला हिंसा अभियान पर एक नजर। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड मोबाइल वाणी पर 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक अभियान चलाया गया था, जिसमें आप सभी ने हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया देकर इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाया था और इस मुद्दे को और गहराई से जानने की कोशिश करने में हमारा साथ दिया। तो आज हम इसी अभियान से जुड़े एक और मुद्दे की ओर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। तो आइए सुनते हैं इसी विषय पर ऑक्सफैम इंडिया के साथ साझेदारी में ऑल इंडिया रेडियो रेनबो द्वारा प्रस्तुत एक पेशकश एक पहल।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फासलों को मिटाना है और आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट पब्लिक प्लेसेस पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में किए गए एक शोध के अनुसार 95% महिलाओं और लड़कियों ने ये बताया कि वो घर के बाहर स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। और ऐसे ही कई कारणों से न जाने कितनी लड़कियां स्कूल तक छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार मलाला यूसुफजई को लड़कियों की शिक्षा को जारी रखने की पैरवी करने के लिए मौत तक का सामना करना पड़ा। नेशनल क्राइम ब्यूरो में 19% मामले उत्पीड़न के हैं, जिनमें से ज्यादातर लड़कियों के साथ हैं। तो आइए सुनते हैं हमारी दो प्यारी नन्ही दोस्तों की साहस भरी कहानी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं शालू का और नीलोफर का। शालू, नीलोफर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम फासलों को मिटाना है में।
शुक्रिया।
सबसे पहले तो शालू, आप हमें ये बताएं कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
मैं 12th में हूँ।
और नीलोफर, आप?
मैं BCom कर रही हूँ।
आज जैसा कि इस कार्यक्रम में आप जानती हैं, हम लड़कियों के साथ हो रही हिंसा और गैर बराबरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो शालू, ऐसी कोई घटना आपको याद आती है जब स्कूल में जाते हुए, स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर आपको डर लगा हो या किसी तरह की छेड़छाड़ का आपको सामना करना पड़ा हो, ऐसी कोई बात हुई आपके साथ?
हाँ जी, मैं एक बार स्कूल जा रही थी तो ऑटो में जो ड्राइवर ड्राइव करता है वो साथ में एक जेंट्स को बिठाया था और ऑटो में सिर्फ मैं जा रही थी और एक मेरी फ्रेंड। तो वो हमारे स्कूल जाने के रास्ते में एक मतलब सुमसम सा एरिया आता है, वहाँ से वो जब निकल रहा था तो ड्राइवर के साथ जो सेकंड पर्सन बैठा था उस वो ऑटो वहाँ पे रोक कर और फिर वो हमसे मतलब बदतमीजी से बात करने लग गया। तो हमने ऑटो वाले से बोला तो ऑटो वाले ने बोला कोई बात नहीं बच्चे, आप लोग तो ये सब समझते हो तो इसका रिप्लाई दो।
तो आपने उस बहुत मुश्किल सिचुएशन का किस तरह से सामना किया?
पहले तो मैं बहुत डर गई थी वहाँ कि मैं अकेली हूँ और मेरी फ्रेंड भी मतलब वो बोलती नहीं थी।
जी जी।
तो मैंने सोचा मैं अकेली हूँ यहाँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद खुद में देखा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, मुझे इसे सही करना होगा।
जी।
तो वो सेकंड पर्सन था जो उसने सेकंड टाइम मुझसे बोला कि आपकी स्कर्ट थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, बहुत नीचे है। तो मैंने फर्स्ट टाइम कोई आंसर नहीं दिया, सेकंड टाइम बोला इससे आपको क्या करना है, मेरी बॉडी है, अगर मैं कुछ भी पहनती हूँ वो मुझे पसंद हो ना हो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो उसने फिर से मुझे बोला तो मैंने उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा खींच के।
अब सवाल ये उठता है, जब आपने उसको थप्पड़ मारा उसके बाद में उस शख्स का रिएक्शन क्या था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, उसने क्या किया?
उसने पहले तो मतलब मुझे देखता रहा वो, और फिर उसने सोचा मुझे कुछ करे। इससे पहले एक बाइक आ गई वहाँ पे, बाइक पे जो था उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो मैंने बताया कि उनको ये ऐसे से बोल रहे थे, फिर बाइक वाले ने फिर उसको मारा।
ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो उस बहादुर शख्स के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। श्रोताओ, इसका मतलब ये है कि हम में से जिम्मेदार लोग हैं इस समाज में, बहादुर लोग हैं इस समाज में, जो कि अपनी माओं बहनों बेटियों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया बात आपने की जो उसको तुरंत वहां पे जवाब दिया, दोबारा उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी, वो दो बार सोचेगा ऐसा कुछ भी करने से पहले। अब नीलोफर, आप साथ में खड़ी हुई है माइक पे, जैसा कि शालू ने अपना एक अनुभव बताया, आपके साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ?
जी हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं 8th क्लास में थी
जी।
तो एक लड़के ने मुझे बिना फालतू में, हम जा रहे थे तो उसने चांटा मार दिया था मेरे। वो इस बात पे मारा था क्योंकि वो मेरा पीछा करता था मैं जब ट्यूशन जाती थी
जी।
तो उसने बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो मैंने बोला मैं नहीं करती और मुझे अभी पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती। घर पे गए, फिर मम्मी से बोला तो मम्मी आई और वहाँ पे से ना पुलिस भी देख रही थी, तो पुलिस ने भी बोला क्या हो गया बताओ मैं पुलिस हूँ। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये ऐसी ऐसी बात हुई है। तो फिर वो स्कूल के पास हम जा ही रहे थे तो वो लड़का मिल गया, फिर उसे बहुत मारा पुलिस ने भी।
पुलिस ने भी एक जिम्मेदार काम किया है, इसके लिए पुलिस जी बधाई की पात्र है और आप, आपकी मम्मी दोनों बधाई की पात्र हैं। श्रोताओं, इससे एक बात उभर के सामने आती है, वो ये कि हमें अपनी बच्चियों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जब भी उन्हें इस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वो चुप ना रहें। आपकी बेटियों की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उनको बहादुर बनाइए, उनको ये आप ताकत दीजिए, कहें उनसे कि बेटा तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ में हैं, और उनको संगठित बनाइए। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जब स्कूल में, आप अभी 12th में पढ़ती हैं, आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में गई हैं, आपके साथ में कोई ऐसी लड़की रही जिसको कि इस छेड़छाड़ की वजह से कभी स्कूल छोड़ देना पड़ा हो? जी, आप कुछ कहना चाहती हैं शालू, बोलिए।
हाँ जी, मेरी फ्रेंड थी, एक बार वो स्कूल आ रही थी तो रास्ते में, मतलब 4-5 दिन पहले से एक लड़का उसको फॉलो कर रहा था, तो वो डर के मारे अपनी फैमिली को नहीं बताती है क्योंकि उसको स्कूल छूट जाएगा या मम्मा साथ में आने लगेंगी या और भी कोई बात होगी। फिर एक बार उसकी मम्मी स्कूल आती हैं, फिर मतलब हम सारी फ्रेंडों से पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, वो स्कूल क्यों नहीं आना चाहती। तो फिर हमने उनकी मम्मी को बताया, सेकेंड टाइम से उनकी मम्मी ने बोला ठीक है मेरी बेटी जब स्कूल नहीं आना चाहती तो वो नहीं आएगी, आज के बाद मैं उसे स्कूल नहीं भेजूंगी।
अब शालू और नीलोफर, आप दोनों से मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हमारे देश की एक हकीकत है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, सड़कों पे लड़कियों के साथ में इस तरह से छेड़छाड़ होती है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप क्योंकि इन सब से दो चार हो चुकी हैं, कोई समाधान, प्रैक्टिकल समाधान आप दोनों कुछ सुझाना चाहेंगी? जी बोलिए, बोलिए शालू, बोलिए।
मैं ये बोलना चाहूंगी हर एक लड़की को जो इस मुसीबत की वजह से अपने घर में बैठी है या फिर पढ़ना नहीं चाहती, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि डरने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप इसका सामना करेंगे तो आप अपना फ्यूचर बना सकती हैं, अदरवाइज इस डर से घर में बैठेंगी तो आपको क्या होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज का सामना करें, डरे ना, आपके साथ सब है।
संगठित होने की जरूरत है, आप ये कह रही हैं, स्कूल टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, आपको आवाज उठाने की जरूरत है। आप दोनों इस कार्यक्रम में आए, शालू और नीलोफर, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इन परियों को चाहिए आजादी से उड़ने के पंख। प्रसून जोशी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां एकदम सच हैं। मुझे पंख दे ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दे। जी हां साथियों, इन परियों को चाहिए ये पंख, इन फासलों को मिटाने के लिए जो आज भी व्याप्त हैं हमारे समाज में।
जैसा आपने सुना, महिलाओं के जीवन की कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह पेशकश पसंद आई हो। हम धन्यवाद करते हैं ऑक्सफैम इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो रेनबो का, जिन्होंने झारखंड मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए इतनी ज्ञानवर्धक पेशकश को चलाने की अनुमति दी। इसी के साथ श्रोताओं, हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे ऐसी ही एक और पेशकश के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, धन्यवाद।
अब आपके मुद्दों का मोबाइल।